ओम शांति। हमारे बीच ज्ञान सूर्य शिव बाबा के लाडले बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य सूरज भाई जी उपस्थित हैं, तो हम सब एक हाथ की ताली बजाकर आपका स्वागत करेंगे। आदरणीय सूर्य भाई जी, जरा सा खाली बता दें कि आज जिस प्रकार से आप देश विदेश में अपनी सेवाएं कर रहे हैं, तो ये आपका बचपन का बहुत अच्छा पुरुषार्थ है जो बताना चाहूंगी मैं, क्योंकि बचपन से ही आपको योगी बनने की अभिलाषा थी, भगवान को जानने की इच्छा थी। 14 साल की उम्र में आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। आप तार्किक बुद्धि के धनी थे। आपको एक पुस्तक मिला था राजयोग की विधि, जिससे आपको बाबा का परिचय मिला। 1968 में आपने 3 बार बाबा से मिलन मनाया हुआ है, और कुछ बातों का अभ्यास जो आपने किया, जिस अभ्यास के द्वारा आज आप इस स्थान पर उपस्थित हैं, आपने 5 साल तक सिर्फ आत्मा देखने का अभ्यास किया हुआ है। कुछ दृढ़ संकल्प आपने अपने लिए बनाए थे कि यज्ञ सेवा में कभी ना नहीं करूंगा, कभी कुछ मांगूंगा नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अमृत वेला मिस नहीं करूंगा और डेली क्लास करूंगा। बाबा ने आपको मनन शक्ति की प्रेरणा दी, स्वमान का अभ्यास कराया। आपने 5 साल तक क्रोध मुक्त होने का अपने आप पे मेहनत किया है, और इन्हीं अभ्यासों के द्वारा आज आप योगी राज सूरज भाई जी हैं, जो हम सभी को योग में उड़ते और उड़ाते रहते हैं। तो आपके लिए, आपके स्वागत के लिए कहूंगी, दीपक में ज्योति, ज्योति में प्रकाश, पुलकित है धरती, जगमगाए आकाश, देवों की कतार, होनहार देवता यहाँ विराजमान है, देवों की कतार कहे बारम्बार, इस सभा में आपका स्वागत और सत्कार है। स्वागत और सत्कार।
ओम शांति। हमें अपने जीवन को, पुरुषार्थ को सहज करना है, दोनों का गहरा कनेक्शन है। सहज स्वभाव होगा तो पुरुषार्थ भी सहज होने लगेगा, परंतु पुरुषार्थ के लिए कुछ मेहनत, कुछ अभ्यास अवश्य करने पड़ते हैं। और बाबा के बहुत अच्छा 2 महावाक्य हैं, जो सहज योगी बन जाएंगे वही विश्व महाराजन बनेंगे। आज की मुरली का वरदान भी याद कर लो, जो स्वमानधारी बन जाएंगे वही विश्व के महाराजा बनेंगे। बिल्कुल सरल कर दिया बाबा ने। सहज योगी जीवन होने से जीवन भी सहज हो जाता है। जीवन में जो अनेक कठिनाइयां हैं आजकल संसार में, वो भी सरल होने लगती हैं, सहज भागने लगती हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह आज मन से सभी अपने को तैयार करें, हम थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे। करेंगे मेहनत कौन सी होती है? अभ्यास करने की मेहनत और कुछ नहीं, अभ्यास पर अटेंशन देने की मेहनत। बहन जी मेरे बारे में कुछ कह रही थी, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो भिन्न भिन्न अभ्यास मैंने किए बहुत चीजें, पर चिंतन छोड़ने के लिए भी 3-4 साल बहुत अच्छा ध्यान दिया, उन चीजों से मुक्त हुए, लेकिन चार्ट बहुत लिखे मधुबन में आके, चार्ट बहुत लिखे, और उसमें 2 सबसे पावरफुल चार्ट थे। एक वो जो बाबा मुरलियों में बोलते हैं, मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। 1970 में 18 जून को, मुझे डेट भी याद रहती है, बाबा ने ये विस्तार किया था, मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। तो मैंने उसी रात बना दिया था, उसका बहुत अच्छा अभ्यास हुआ उसे पहले से ही। घंटे घंटे का योग चार्ट लिखा, बहुत फायदा हुआ उसमें, और वो इतना ज्यादा अच्छा हो गया जो मैं भी कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, सबको ये पक्का पता हो, तो बाबा की बहुत मदद हमारे साथ काम करने लगती है। हम कुछ करें, एक कदम उठाएं, बाबा बहुत मदद कर देता है। हम बहाने करते रहें, कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, हम बहुत बिजी हैं, हमें ये समस्याएं हैं, तो बाबा की मदद भी हमसे हट जाती है। तो पहली चीज, कोई बहाना दिए बिना सभी कुछ अभ्यास करने की मेहनत करेंगे, वो मैं आपके सामने रखूंगा, आपको सोचना नहीं क्या करेंगे। स्वमानधारी बनेंगे, याद रखेंगे। अब एक दूसरी बात जो सबको अंदर समा लेनी है, कोई भी मनुष्य बिना चुनौतियों के पार किए महान नहीं बनता। समस्याएं हैं, आप सबके परिवारों में भी हैं, लेकिन जो मनुष्य, ये बाबा के महावाक्य जो मैंने सीखा था, जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ ले, वही योगी बन सकते हैं। संगठनों में भी बातें आती हैं, ऐसा नहीं आती। कोई सोच सकता है हम तो मधुबन में हैं, थे, हमें थोड़ा ही कुछ आएगा। सब कुछ आता है, हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, एक याद आ गया मुझे। खाना बनाना तो हमसे आता नहीं था, सीख रहे थे। चावल एक दिन बनाए, थोड़े से हार्ड रह गए। तो एक व्यक्ति जो तेज तराक था, यहां पहले से था हमसे भी, उसने आके बोलना शुरू कर दिया सीधा मुझे ही, ध्यान नहीं देते, ये है वो है, योग पे ध्यान रहता है, काम पे नहीं रहता, कई बातें बोली। अब मैंने क्या सोचा, वो तो चला गया एक डेढ़ मिनट बोल के। मैं सोचा भाई चावल कच्चे रह गए तो इसका बोलना तो ठीक ही है, बस खत्म हो गई बात। मन में और संकल्प चले ही नहीं, ये भी नहीं ये क्यों बोल रहा है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भाई मेरी गलती हुई है तो बोलेंगे ना, और भी दो चार बोलेंगे, हालांकि और नहीं बोला। तो ऐसे अपने मन को हल्का कर दिया कि कहीं भी मन में किसी भी बात के कारण संकल्पों का तूफान न चले। बाबा ने हम सभी को पांच स्वरूपों का अभ्यास बहुत सिखाया। आप में से जो थोड़ा ज्यादा समय से ज्ञान में हैं, जब बाबा आते थे अव्यक्त बाबा, 18 से बाबा का आना बंद हुआ था, 8 साल तो हो गए, उसे पहले अगर कोई 8-10 साल से ज्ञान में है तो उसने सुना होगा पांच स्वरूपों के अभ्यास पर बाबा ने कितना ध्यान दिया दिलाया। 8 बार करो सारे दिन में, कई बार इस पर मुरलियां चली, तो आपको इसके पीछे का जो रहस्य है वो मालूम रहे। जिस स्वरूप को हम अपने सामने देखेंगे उसके वाइब्रेशंस हम में समा जाएंगे, हम वही बन जाएंगे। विश्वास के साथ, जैसे ब्रह्मा बाबा, बाबा को बहुत नशा था क्या? बोलो क्या था नशा? सुना है अपने मुरली में भिन्न भिन्न शब्दों में बाबा को नशा रहता था, नारायण बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। एक अनुभव सुनाता हूं जो बहुत दिन के बाद मुझे याद आया, दादी जानकी ने सुनाया। उनका कमरा था हॉल के पीछे, ये हिस्ट्री हॉल है ना, तो दिन में 3 बजे इधर से कमरे की ओर जा रही थी तो क्या देखा, बाबा अकेले डांस कर रहे हैं हॉल में। पहले तो वही चक गई, बाबा ने देख लिया, आओ बच्ची, बाबा आप डांस कर रहे थे। हाँ बच्ची, बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं जाकर ये नारायण बनूंगा। तो नारायण की छवि आंखों के सामने रहने लगी थी, वो तो उनका शुरू से ही था, लेकिन लास्ट 3 साल में बहुत ज्यादा। तो नारायण के सारे गुण, संस्कार, पवित्रता जीवन में आ गए, ये राज है। आत्मा को भी आप अपने सामने देखा करें, ऐसी हूं मैं आत्मा, अपना पूज्य स्वरूप भी जो मंदिरों में है उसे सामने देखा करें। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास, और फरिश्ते का अभ्यास किस तरह करेंगे, मैं आपको एक बाबा की बात सुना देता हूं। ये अभ्यास करने में आपको बहुत आनंद आएगा, मन व्यर्थ से आपे ही मुक्त रहेगा और योग सहज हो जाएगा। अगर 2 चीजें यहां ध्यान दें, एक है बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसे कैसे खत्म करें, युद्ध हो रहा है, खत्म नहीं होते हैं, भूल जाओ इसको। 5 स्वरूपों का अभ्यास शुरू करो, 1 हफ्ते में ही अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त। हफ्ता केवल, अगर कोई लगन से कर ले, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा। 4 बार सवेरे, 4 बार शाम को। कैसे करेंगे मैं थोड़ा बताऊंगा, फरिश्ते का बता रहा हूं। अव्यक्त बाप दादा नीचे आए हुए थे, बाबा ने एक मुरली चलाते हुए बीच में ही कहा, आज वतन का एक सीन सुनाते हैं। वतन में 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा, दीदी मनमोहिनी और 1 ये गुलजार बच्ची। बाबा ने क्या किया, रंग बिरंगे हीरे हाथों में लिए, उनका पाउडर बना दिया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया, और तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। बाबा ने कहा, देखो सीन यहीं से देखो। ऐसे फरिश्ते का अभ्यास करना, ऐसे ही कर लेना। बाबा ने रंग बिरंगे हीरे लिए, पाउडर बनाया, मेरे ऊपर छिड़क दिया है, और अंग अंग से रंग बिरंगी बहुत सुंदर डिवाइन आकर्षक किरणें फैलने लगी। ये है मेरा फरिश्ता रूप, मैं हूं ऐसा फरिश्ता। 10 सेकंड से शुरू करेंगे, 30 सेकंड, 1 मिनट, चलते फिरते, ये चलते फिरते का अभ्यास है, इसमें बैठ के टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास सहज होते होते अनुभूति भी सुंदर होंगी, मन एकाग्र भी होता जाएगा। पसंद है, हो सकेगी ये मेहनत करनी है। यहीं बैठकर आप मधुबन में ही, यहां से जाने के बाद मुझे क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग बना लेना, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, 5 बातें कोई, और ज्ञान की कुछ पॉइंट जो आपको सुंदर लगी हो, जो बल देती हो, जो सुख देती हो, वो अलग से नोट कर लेना। रोज उन्हें 1 बार पढ़ लेना, वो 10 बार आई हो, सारी मूल क्लासेस तो आप न पढ़ सकेंगे न लिख सकेंगे, चाहे वो 8-10 ही हो, वो सुंदर बातें अपने पास रखना, इससे मिलेगा ज्ञान का बल, जो बहुत जरूरी है। जब मनुष्य के सामने बातें आती हैं, तो ज्ञान की कोई पॉइंट ही उसको निसंकल्प करती है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज मिली है हमें, छोटा नहीं। मैं बताता ही हूं, आपने सुना ही है, एक एक संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। कल भी मैं कह रहा था, वो कण कण में पहुंच जाती है प्रकृति के, और सबसे सुंदर संकल्प हमें मिलते हैं मुरली से, ज्ञान से। तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है ज्ञान का, इसको भी अपने जीवन में महत्व देना। जो बहन जी मुरली की बात मेरे लिए कह रही थी, मुझे इस जीवन में सबसे ज्यादा सुख मुरली से मिला, अभी मिलता है, पर मैं स्पष्ट ही कह दूं, जब तक दादी प्रकाश मणि सुनाती थी वो सुख वो आनंद कुछ अलग ही था। वो तो सुनाती क्या थी, उसका स्वरूप बन जाती थी। तो जो सुनाने वाला स्वरूप बनेगा तो सुनने वालों पर तो उसका गहरी छाप पड़ेगी। बहुत बहुत श्रेष्ठ सुख मुझे मुरलियों से मिला, गहरी बातें भी मुरली से मिली। लोग सोचते हैं मैं शायद किताबें बहुत पढ़ता हूँगा, क्लास कराता हूँ तो बहुत पढ़ता हूँगा। मैं कुछ भी नहीं पढ़ता। अब तो मेरी आंखों में भी तकलीफ हुई, 2-4 साल से तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, न मैं व्हाट्सएप आदि पे ज्यादा रहता न देखता। जो बाबा ने कहा था, जब कहा था, उसका तभी बहुत अभ्यास किया था, तो वो सब बुद्धि में समा गया है। बाबा की मुरलियों से ही ये मन की शक्तियों की बात हमने सीखी। ये कोई मनोविज्ञान की किताब हमने पढ़ी हो उसमें नहीं, उसमें तो बातें हैं ही नहीं। लौकिक एजुकेशन, चाहे कोई एमए कर ले मनोविज्ञान से, पीएचडी कर ले, उसके पास ये बातें नहीं है जो बाबा ने सुनाई है। हमारे पास एक बार एक प्रोफेसर बुलाए गए अहमदाबाद से, मनोविज्ञान के, जो सबकॉन्शियस माइंड पर, अंतर मन पे लेक्चर लेते हैं। तो उन्होंने 4 लेक्चर लिए, यहाँ इंजीनियर साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी उसमें रिकॉर्ड कर लिए गए, मैंने भी वो सुने। तो मुझे इसका प्रारंभिक ज्ञान हुआ, मन की, अंतर मन की शक्ति क्या है ये। तो फिर मेरे को तो फट से समझ में आ गया सब बाबा की मुरलियों से। तो मैं एक दिन क्लास करा रहा था और वो जो प्रोफेसर था वो भी पीछे बैठा था। मैंने देख लिया, छोटी क्लास थी, कि वो नीचे ही बैठा है। मैंने उस क्लास में एक बात कही, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस अंग्रेजी का शब्द है, अंतर मन, आधा चेतन मन, सीधी भाषा जो हमारा मन है तो चेतन है ना, वो आधा चेतन, इसलिए उसको अर्ध चेतन अवचेतन भी कहते हैं। तो मैंने बताया, सवेरे आंख खुलते ही पहला संकल्प मनुष्य जो करेगा, इसमें ज्ञानियों की बात नहीं, सारा संसार, जो पहला संकल्प करेगा उसका उसके जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब क्लास के बाद वो आ गया मेरे पास, कह रहे भाई आपने ये बात बताई, ये तो कहीं लिखी नहीं थी हमारे यहाँ, आपने कहाँ से बता दी। मैंने कहा हमारा प्रोफेसर कोई और है भाई, हमें पढ़ाने वाला ही कोई और है। कहा ये तो इतनी वंडरफुल बात है, मैं भी अपने लेक्चर में सुनाया करूंगा। तो बाबा ने जो हमें मन का ज्ञान दिया है, राजयोग में मन की तो बात है सारी, मन और बुद्धि, वो संसार में कहीं नहीं है, इसलिए हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और अपनी बुद्धि को इतना क्लियर कर दें, इतना स्वच्छ करें कि वो सब कुछ आने लगे आप ही। मैं कोई भी क्लास बिना तैयारी के ही कराता हूँ, सिवाय जो बाबा से पहले होती है उसकी भी तैयारी 5 मिनट करता हूँ, बस 5-7 पॉइंट लिखता हूँ, इन पे आज बोलना है। ये सब होता है, ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, अपनी महिमा के लिए नहीं, बुद्धि को श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए स्वच्छ रख दें। हमारी बुद्धि, मैं जो बाबा की मुरलियों से सीखा था, बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि सोने का बर्तन होनी चाहिए। मैं कहता था मेरी बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें किचरा नहीं डाला जा सकता। आपके घर में सोने की बाल्टी आ जाए तो दूध ही डाल सकते हैं, सब्जी भी नहीं डालेंगे, होगा या नहीं, किचरे की डस्टबिन तो बनाने की बात ही नहीं। तो हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, जिसको बाबा ने पारस बुद्धि कहा, दिव्य बुद्धि कहा, ईश्वरीय बुद्धि, सबसे अच्छा शब्द है, तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है, स्वीकार कर लें इसको। एक है हमें बनानी है, वो भी है, लेकिन हम हैं वैसे ही, तो तब इस बुद्धि में सब कुछ स्वतः ही भर जाएगा। मनन करने की बात मुझे अव्यक्त बाबा ने सिखाई थी, और एक ही बार में सीख गई वो बात, और वो वरदान मिल गया था बाबा का। तो स्वीकार करना, ये बात मैं क्लासेज में बहुत कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक के जीवन में कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ घटनाएं, कुछ पास्ट ऐसा है जिसे बदला नहीं जा सकता, शिव बाबा भी नहीं बदल सकता। उन्हें स्वीकार करके चित्त को शांत कर दें, चित्त को शांत करो। मृत्यु जो मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट देती है, मैं आपको एक सीन सुना देता हूं, बाबा की एक बात सुना देता हूं और उसको आप याद रखना। तब केवल पांडव भवन था, एक भाई थे यहां कुमार, बहुत अच्छे, यहीं से स्कूटर पे जा रहे थे। एक मोड़ आता है ज्ञान, जब हम ज्ञान सरोवर की ओर से आते हैं, मोड़ बड़ा मोड़ है, तेज चला रहा था, बस के नीचे चला गया, एक्सीडेंट हो गया, तुरंत मृत्यु हो गई। चार पांच दिन के बाद अव्यक्त बाबा आए ओम शांति भवन में, और निर्वैर भाई ने बाबा को कहा, बाबा इतना अच्छा कुमार था, आपने उसको मदद नहीं की। कहते हैं ना, ब्राह्मण तो सोचते हैं ना, बाबा हमें मदद क्यों नहीं करता। बाबा का उत्तर सुनो, जो बुद्धि को शांत करने के लिए बहुत बहुत सुंदर रहस्य है। बाबा ने कहा, जिसकी मृत्यु जिस स्थान पर, जिस समय और जिस कारण से होनी है, वो अटल सत्य है, उसे भगवान भी टाल नहीं सकता। बाबा के शब्द हैं ये, मेरे नहीं। अटल सत्य है, उसे भगवान भी टाल नहीं सकता। सभा में सन्नाटा छा गया, ओम शांति भवन भरा बैठा था, समझ गए। इसलिए किसी की भी मृत्यु अटल है। एक माता आई अभी मुझे, इसलिए थोड़ी देर हुई, अब मैं कहीं से गया ही था, और वो माता का, मैं तो भाई शांति भवन से आई हूं आपसे मिलने के लिए, मैं क्या कहूं, मैं नहीं मिलूंगा, मुझे जल्दी है, क्या करूं। मैंने कहा, बताओ क्या हुआ। मेरे पति की मृत्यु हुई कुछ समय पहले, उससे मेरी मनोस्थिति पूरी बिगड़ गई। मैं 20 साल से ज्ञान में हूं, उससे हमारे परिवार में पूरी अशांति हो गई। मैंने कहा, तुम्हारी स्थिति अच्छी रहे तो आपके परिवार में भी सब कुछ अच्छा रहेगा, समझ गए ना। आज 20 साल से ज्ञान में चलने के बाद भी वो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई कि उसके पति की मृत्यु हुई, क्यों हुई। और बहुत माताएं मैंने ऐसी देखी, छोटी आयु की भी, जिनके पति चले गए, ठीक है भाई, उनका पार्ट इतना ही था हमारे साथ, अब कहीं बाबा ने और जगह भेज दिया, ओम शांति, स्थिति नहीं बिगड़ने दी। तो मृत्यु किसी की भी हो जाए, अब तो बहुत होंगे ना, दुनिया खाली होने वाली है, होगी या नहीं। कई सोचते हैं, क्यों बाबा हमें तो बचाए, हमारे परिवार को तो बचाएगा, उसको ही ये दुनिया खाली करानी है। किसके लिए? हम सबके लिए। बाबा ने कहा, वो मुरलियां अभी कम सुनने में आती हैं, बच्चे ये दुनिया खाली होगी, बाबा का ऐलान होगा, मेरे देवता बच्चे आ रहे हैं, खाली करो। ये कवि के शब्द हैं, बाबा के ये भी शब्द हैं, सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूं गरीब बनाऊं, जिसको चाहूं साहूकार बनाऊं। एक और वो ड्रामा का ज्ञान देता है, पुरुषार्थ का ज्ञान, दूसरी ओर ये भी कह दिया, और साथ में ये भी कह दिया था, मैं साहूकारों को गरीब, गरीबों को साहूकार अवश्य बनाऊंगा, नशे से कहा हुआ, सिंपल भाषा नहीं थी, हमने सुने हुए इन कानों से। तो प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी। चार पांच दिन पहले मुरली में एक और राज भरी बात आई, मुझे बहुत प्रिय लगी। बाबा ने कहा, बाबा पहला चांस गरीबों को देता है, साहूकारों को लास्ट में चांस देगा, क्योंकि हम भी साधारण घर से ही आए थे, गरीब ही कहेंगे, हम तो बड़े खुश हो गए इसको सुन के कि सबसे पहला चांस हम लोगों को मिला है। फिर मुझे ख्याल आया, अगर हम गरीब ना होते, साहूकार घर से होते, तो हम यहां थोड़ा ही आते। तो गरीबों से यज्ञ चला, गरीबों से यज्ञ स्थापित हुआ, फिर ये अथाह खजाने बाबा ने हम सबको दे दिए। 500 रूपों का अभ्यास करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। अब एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्लान यहां से बनाना, थोड़ी सी मेहनत, जीवन भर नहीं, मैं इतना कहूंगा आपको, 6 मास आप अपने से मेहनत कर लो, पुरुषार्थ की जीवन में दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। 6 मास केवल अपने को दे दो, कुछ चीजों का त्याग कर देना, कुछ चीजों को अपना लेना। त्याग उनका करना होता है जो हमारी बुद्धि को भटकाती हो, ऐसी चीजें, खान पान में बुद्धि जाती हो, 6 मास के लिए विदाई दे दो, नहीं अब सीधा साधा भोजन खाएंगे। देखने में बुद्धि भटकती हो कुछ, मोबाइल में बहुत चीजें हैं, छोड़ दो उसे 6 मास के लिए, तो परमात्म सुख आत्मा में भर जाए, फिर और किसी सुख की तरफ हमें देखने की इच्छा ही नहीं होगी आपको। परमात्म सुख सबसे बड़ा सुख है, वो मिलने के बाद बुद्धि आप ही स्थिर हो जाती है। गीता के दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी बातें हैं, स्थिर बुद्धि आत्मा के लक्षण, स्थिर बुद्धि योगी के लक्षण, स्थित प्रज्ञ योगी, प्रज्ञ माना बुद्धि संस्कृत में, तो उसमें एक बात है, हे अर्जुन, वो योगी जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है स्थित प्रज्ञ है। इस दुनिया में गीता पाठी, गीता के विद्वान इसका मीनिंग नहीं जान सकते, इसका मीनिंग वही जान सकते हैं जिन्होंने आत्मा में ही संतुष्टि का अनुभव कर लिया हो, आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से, आत्मिक रस को प्राप्त करके, सभी रसों से मुक्ति, जिसने स्वयं को संतुष्ट कर लिया वो स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि हो जाते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे सभी स्वमान का, 5 स्वरूपों में भी स्वमान ही है, स्वमान ही है, मैं फरिश्ता हूं ये स्वमान, मैं देवकुल की निर्विकारी आत्मा हूं ये स्वमान, मैं पूज्य हूं ये स्वमान, ऐसे ही अपने लिए 8-10 पावरफुल स्वमान चुन लें। मैं आपको लिखा देता हूं, फटाफट लिख लो, कुछ भी उनमें से चुन लेना, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इशारों में लिख लो, फिर डिटेल लिख लेना, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विजय रतन हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूं, कितने हो गए हैं? 8 हो गए, ये बहुत अच्छे स्वमान हैं। और भी लिख लो, 2 थोड़े बड़े हैं, मैं पूर्वज हूं, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा तपस्वी हूं, स्व स्वमान को स्वीकार करना। देखो कहां गड़बड़ होती है, मैं पहला ही उदाहरण देता हूं जो मैं सदा ही दिया करता हूं, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। स्वमान आपने याद किया, मैं एक महान आत्मा हूं, अभी इसका नशा चढ़ा या नहीं चढ़ा, ऐसे ही सोच लिया मैं महान आत्मा हूं। अब हमारी बुद्धि क्या करती है, हमने सोचा मैं महान आत्मा हूं तो कहीं कहीं बुद्धि रिजेक्ट कर देती है, नो तुम महान नहीं हो, तुम तो ऐसे हो, अभी ये कमी है, इसको ठीक करना है। कमी होना अलग चीज है, हम कलयुग के अंत में पहुंच गए, कमियों के अलावा रहा ही क्या है, कलयुग के अंत में सारा खेल तो बिगड़ गया ना। सिंपल भाषा में कहें साहब जो जमा पूंजी थी खा पी के पूरी कर दी, कुछ नहीं बचा। अब बाबा हमें जगा रहा है, पहचानो अपने को, तुम महान आत्माएं हो, जगा रहा है, सोए हुए को जगा रहा है। और जैसी स्मृति हमारी बढ़ती जाएगी वैसी ही हमारी स्थिति बनती जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मुझे बहुत प्रिय लगा वो, महादेव का कोई सीरियल चल रहा था, मैं तो नहीं देख पाता, किसी ने एक क्लिप दिखाई कि देखो ये कितनी अच्छी बात है, क्या पार्वती को राक्षस उठाकर ले गए और दिखा कि राक्षसों के महल में पार्वती बैठी है थोड़ी उदास, इधर कार्तिकेय और गणेश दो पुत्र थे ना महादेव के, वो कह रहे हैं पिताजी आप हमें आज्ञा दो, हम युद्ध करके माताजी को छुड़ा कर लाते हैं। महादेव ने कहा नहीं, देखो पार्वती को दिखा दिया, उसे धीरे धीरे स्मृति आ रही है और बहुत जल्दी वो स्मृति स्वरूप हो जाएगी और राक्षसों का खुद ही संहार करके वापिस आ जाएगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी सीख है इसमें, स्मृति आते आते मैं शिव शक्ति हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, आते आते शक्तियां बढ़ जाएंगी, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तो स्वमानों को स्वीकार कर ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्वमान एक दिन के ले लो, सोचो उसे बहुत बार याद करना है, 21 बार याद करना, हर घंटे में 2 बार याद करना, ये मेहनत इसे कहते हैं। बस ये नहीं सवेरे याद किया और शाम को सो रहे तो भूल गया, आज तो सब भूल गया, ये नहीं, ऐसा रिमाइंडर कुछ याद दिलाने वाला अपने पास रख लो, जो याद आए आज का मेरा यह अभ्यास है। इस एक संकल्प से मान लो आपने संकल्प रख लिया, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मुझे आज इसको 21 बार याद करना है, आपने शुरू किया मैं विजयी रतन हूं, तो एक ही बार ये थोड़े से नशे में आने से वो नशा आप 5 सेकंड से शुरू करना, 5 सेकंड तो बहुत छोटा है ना, मैं हूं अनेक व्यर्थ खत्म। दूसरी बार घंटे में याद किया मैं विजय रतन हूं और व्यर्थ खत्म। अभ्यास करते करते आत्मा व्यर्थ से मुक्त होती जाएगी। हर अव्यक्त मुरली में जो बाबा की पहली लाइन होती है वो स्वमान से भरी होती है, याद है, आज बाप दादा अपने होली हंसों को देख रहे हैं, आ गए तो स्वमान, आज बाप दादा अपने हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से मिलने आए हैं, 2 बड़े स्वमान आ गए। तो याद रखेंगे ये बात, लिख लो, जितनी ऊंची नजर से भगवानों आज, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं उतनी ही ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। इसे पढ़ लेना, छह मास रोज एक बार पढ़ लेना, 10 सेकंड का काम है, बस जागृति रहे। हम साधारण नहीं हैं, बहुत महान हैं। बाबा जब हमें देखता है तो सोचता होगा ना, यही मेरे वो बच्चे हैं जिनके द्वारा मुझे विश्व को बदलने का काम करना है, यही वो मेरे बच्चे हैं जो 2 युग तक इस संसार को संभालेंगे, यही वो मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैं राजभाग देकर निश्चिंत होकर अपने धाम में विश्राम करूंगा। बहुत ऊंची नजर से देखता है वो हमें। एक एक स्वमन से और क्या होगा। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, मैं विजयी रतन हूं, इस पर थोड़ा चिंतन कर लेना। अर्थात माया को जीतने की शक्ति मेरे अंदर है, स्वीकार करना। मैं माया से अधिक पावरफुल हूं, डबल कर लेना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विजयी रत्न हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो सोई हुई शक्तियां जगती रहेंगी। ये सोई हुई शक्तियां हमें रोज जगानी है, ध्यान दें इस बात पे। बहुत शक्तियां सोई हुई हैं, क्योंकि जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने थे, ध्यान से सुन लेना, बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां हमें दे दी थी, 8 शक्तियां वो हमारे पास आ गई, लेकिन वो सोई रहती हैं। जब हम उन्हें यूज नहीं करते तो वो डल होके पड़ी रहती हैं, जैसे सोई रहती हैं हमारे अंदर। इस स्वमान से वो जग जाएंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं, तो वो शक्तियां विजय दिलाने में काम करती रहेंगी। फिर माया पर हमारी विजय होती जाएगी। जिस भी संस्कार को, जिस भी तरह की माया को आप जीतना चाहते हो, संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इससे अधिक पावरफुल हूं। मान लो आपको क्रोध ही आता है, मैं क्रोध को जीतने की शक्ति रखने वाली आत्मा हूं, क्रोध से अधिक शक्तिशाली हूं, क्रोध मुझे जीत नहीं सकता, मैं क्रोध पर विजयी हूं। संकल्प करना, याद रखना, सारे ही पुरुषार्थ में हमारे संकल्पों का ही सबसे ज्यादा महत्व है। संकल्प, संकल्प ही हमें बल दे रहे हैं, हम माया को जीतेंगे, इस संकल्प में बहुत बड़ा बल है। 2 चीजें और लिखा देता हूं, आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि माया को जीतना हमारा मुख्य ध्येय है, और कईयों को माया से युद्ध करते करते जीवन गुजर जाता है। जीवन न गुजरे, बहुत जल्दी 2 महाशत्रुओं पर हमारी विजय हो जाए, काम और क्रोध। क्रोध पर विजय लिख लें अब आप, सवेरे उठते ही आपको 21 बार लिखना है, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत, समझ गए ना। सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन स्वीकार कर लेगा ये क्रोध मुक्त है। मन की शक्ति क्रोध को समाप्त कराएगी 21 बार, और इसी स्वमान से पानी चार्ज करके पी लेना। अब एक ही संकल्प, मैं आत्मा शांत हूं, मैं आत्मा शांत हूं, 7 बार पानी को दृष्टि देते हुए 7 बार याद करके पिएंगे, क्रोध शांत होता जाएगा। दो चार बार पानी पी लो ऐसे ही, उठते ही पिएंगे बहुत अच्छा, उठते ही पानी पीना ही चाहिए, थोड़ा गर्म पीना चाहिए, उसमें ये संकल्प की शक्ति भर दें। काम को जीतना, सवेरे उठते ही मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं, मैं विजयी रत्न हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं, 21 टाइम। क्योंकि बहुत बाबा के बच्चे जो बाबा को छोड़ के गए हैं, जाते हैं, वो काम से हार खा के ही जाते हैं, इसलिए इस पे विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। आपको ख्याल रहे जितने बाबा के अब बच्चे हैं उनसे कहीं ज्यादा छोड़ कर गए हैं माया से हार के। इसमें स्ट्रांग होना है, संकल्पों को भी स्ट्रांग रखना है, क्योंकि इस समय कलयुग की हवा में ही विकार घुले हुए हैं, बोलना नहीं है, कलयुग की हवाएं ही विषय विकारों से भरपूर हैं। हम अपने को सुरक्षित करेंगे इन स्वमानों से, इन अभ्यासों से। कुछ धारणाओं पर बहुत ध्यान देंगे जीवन को सरल बनाने के लिए और योग को भी सरल बनाने के लिए। उन धारणाओं में पहली ही धारणा है सरलता। सरलता, सरलता का अर्थ होता है सहज भाव से सब कुछ करना। सहज भाव बहुत बड़ी क्वालिटी होती है ये मनुष्य की, जो उसके जीवन को सहज बना देती है। सहज, आपको काम करना है, मेहमान घर में आए हैं, ज्यादा काम करना है, सहज भाव से भोजन बनाओ। सहज भाव का अर्थ है मन को तेज दौड़ाए बिना हाथों से काम करो। मन जितना तेज दौड़ता है हाथ उतना ही धीमे काम करते हैं, ये मनुष्य को पता नहीं चलता, वो सोचता है बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। और मन जितना शांत होगा कार्य शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए शांत मन से काम करने की आदत बनानी, एक दिन में नहीं बनेगी, ध्यान मिलाओ इसको, मुझे ऐसा करना है, होगा। आपको सब्जी लेने बाजार में भी जाना है ना, जल्दी जाना है, जल्दी आना है, टाइम कम है, आप बहुत फास्ट चलेंगे, आप करके देखना ट्राई। शांति से चलो बाबा की याद में, आप एक मिनट पहले पहुंच जाएंगे। मैंने ये प्रयोग यही किए हैं, हनीमून पॉइंट है उधर दूर, 3 किलोमीटर होगा यहां से, 2.5। रोज जाते थे, मैं तो 2 बार जाता था, तो बहुत तेज चले, 18 मिनट में पहुंचे। मैंने सोचा आज आनंद पूर्वक चल के देखते हैं, योग युक्त 16 मिनट में पहुंच गए। एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ कि जब हमारा मन तेज चलता है तो पैरों की गति धीमी होती है, हमें लगता है बहुत तेज चल रहे, टांगे दुखेंगी भी, टाइम भी ज्यादा लगेगा। मन की गति शांत है तो पैरों की गति आप ही फास्ट है और थकान भी नहीं है। कार्य की ये गति सब कुछ सीखना है। बाबा की बहुत पहले की मुरली में एक शब्द आता था, सिंधी कहावत है ये, कम खर्च बाला नसीन। इंग्लिश में सिंपल शब्द दिए, इकोनॉमी येट एक्सेलेंस, कम खर्च हो और कार्य सुंदर हो। तो बाबा ने इसकी व्याख्या करते हुए 2 बातें कही, संकल्प कम खर्च करोगे तो काम कम समय में पूर्ण हो जाएगा, बोल कम खर्च करोगे तो काम जल्दी पूर्ण हो जाएगा। तब तो मैं किचन में खाना बनाना सीख गया था, मैंने इसके प्रयोग किए और बहुत अच्छे अनुभव होते थे, जल्दी ही सब तैयार हो जाता था, गलतियां भी नहीं होती थी, नुकसान भी नहीं होता था। तो सरलता दूसरा बहुत बड़ा गुण है, संतुष्टता। संतुष्टता को कई लोग इस तरह गलत समझ लेते हैं कि भाई हमारा बिजनेस है, हम संतुष्ट हैं, अब ज्यादा काम क्या करना। ये नहीं, संतुष्टता एक आंतरिक शक्ति है। काम खूब करो, ज्यादा धन भी कमाने का सोचो, लेकिन चित्त को शांत रहने दो। सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है इसका अर्थ नहीं आगे कुछ नहीं पाना है, पाना है लेकिन शांति के साथ। तीसरा बहुत बड़ा गुण है जिस पर सबको बहुत ध्यान देना है और जो हमारे अध्यात्म से सीधा जुड़ा है, निरंकारिता, मैंपन का त्याग। इससे जीवन सरल हो जाएगा। मैंपन का त्याग, आप मूल्यों को देखें तो मैंपन के त्याग पे ज्यादा मूल्यां चली हैं, संतुष्टता पर ज्यादा मूल्यां चली हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, दुआएं दौड़ दुआएं लो, इस पे बहुत मूल्यां चली हैं। बाबा को पता है ये बहुत बड़ी चीज है। और हम सब आत्माएं जो जन्म जन्म के इस देव और देवियां हैं, उनकी दुआओं में दुनिया वालों की भेंट में 100 गुना ज्यादा ताकत है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो थोड़ा भी योग करती हैं, जिन्होंने अपने विचारों को थोड़ा भी शुद्ध किया है, उनकी दुआओं में बहुत बड़ा बल है। दुनिया में भी लोग दुआएं देते लेते रहते हैं, लेकिन बहुत कम बल होता है उनमें। मैंपन का त्याग, बहुत ध्यान देंगे इस पर। और ये तब होता है जब हमें ये गहराई से रियलाइज हो जाए कि अगर हम अपने को बाबा के आगे समर्पित कर दें, समझ गए ना, समर्पित करते नहीं मधुबन में आ जाएं, बाबा के आगे समर्पित कर दें, तो हमारे द्वारा सब कुछ बाबा करेगा। ये अनुभूति मनुष्य को मैंपन से मुक्त करेगी। सूक्ष्म अभ्यास है, एक दिन में नहीं होगा, पर इसको अपना लक्ष्य बना लें। दूसरी इसमें सुंदर बात, जिसकी सबको बहुत प्रैक्टिस करके अनुभूति करनी है, मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित कर दो। मन के बोझ अर्पित कर दो, और बाबा का ये महावाक याद रखेंगे। बहुत सुंदर महावाक है, मुझे इस महावाक ने बहुत सुख दिया था। हमारे पास तो कोई गृहस्थ का बोझ नहीं है, लेकिन जो सेवाएं होती हैं उनमें जो थोड़ा बहुत रहता था। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? उठाएगा या नहीं? देने की आदत डालें। मैंपन देने नहीं देता, भुलाए रखता है कि बाबा भी हमारे साथ है, भुला देता है हमें, भूलना नहीं है। बोझ दें, अनुभव करें क्या होता है, उसे अनुभव बढ़ेगा और विश्वास होगा कि बाबा सारे बोझ हर लेता है। मैं बहुत पहले एक माता का अनुभव सुनाया करता था, जिसने सुना होगा उसको याद आ जाएगा अभी, माताओं की भावनाओं पर भगवान कैसे राजी रहता है। वो माता सेंटर में बहुत सेवा करती है, मैं भी गया उनके सेंटर में, तो मुझे कहा जो तुम अनुभव सुनाते हो मैं ही तो हूँ। उसने यहाँ सुनाया था ज्ञान सरोवर में, मैंने क्लास कराई रात को, तो उसने कहा मुझे अपना एक अनुभव सुनाना। मैंने बुला लिया, सुना दो। कहा मेरी लड़की की शादी थी, मेरे पास पैसे थे केवल 10,000। आजकल 10,000 तो आप जानते हैं कितने हुए। मैं बाबा के रूम में बैठी और अपना पर्स खोल दिया, रख दिया और बाबा को कहा, बाबा आप इसमें बैठ जाओ। और देखो माताओं का खेल। ये तो मैंने पहली बार सुना था कि कोई दिल में स्थान तो देते हैं बाबा को, बुद्धि में भी देते हैं, पर माताओं का पर्स भी इतना सुंदर है कि भगवान को कह दिया इसमें बैठ जाओ। अब क्या हुआ, लड़की की शादी के दिन आ गए, लोग आते हैं आते हैं, मुझे तो ज्यादा नहीं पता, सबने लिफाफे दिए। कहा ऐसे 20 लोग आए शादी में जो हम लोगों से बहुत नाराज रहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों में चली गई और दोनों ही सेवा में रहते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं देते, लेकिन शादी में आ गए, लिफाफे दिए। और जब हमने गिने तो कितने हो गए होंगे, 13,00,000। मैंने कहा तुम्हारी पर्स में तो भगवान भोलानाथ बन के बैठ गया, भर दो झोली। समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, उसे चाहिए कोई नहीं ना, वो लेगा। समर्पण भाव कहते हैं इसे, एक है समर्पित हो जाना, जैसे हम लोग हुए, ये है समर्पित भाव, समर्पण भाव। मन में यही संकल्प, सब कुछ तेरा। आज अपने मन से एक संकल्प चेंज करेंगे। बहुत सुंदर बात वो बाबा ने कही हुई है, जो बच्चे, पहले सुन लो फिर उसको अपनी भाषा में इशारे में लिख लेना, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। चेंज कर दो अपने संकल्प को। क्या चेंज करेंगे, समझ गए ना, मेरा घर नहीं बाबा का यज्ञ है, मेरे बच्चे नहीं हैं तो आपके ही, लेकिन मेरे बच्चे नहीं किसके, बाबा के हैं सब, वही इनका जिम्मेदार है। वो ज्ञान में है या नहीं है, अपने घर को यहीं से, ये बाबा का यज्ञ है, देख लो इस तरह। और कुछ दिन, 21 दिन ये अपने को भावना दे देना, कोई भी टाइम घर को देखो, ये सब बाबा का यज्ञ है, तुम्हारा यज्ञ तुमको अर्पित। तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे जीवन में, आपको अनुभव होता रहेगा कैसे बाबा अपने यज्ञ की संभाल करते हैं और हम हो गए यज्ञ में सेवाधारी। ये छोटा सा परिवर्तन, संकल्प का परिवर्तन, समर्पण भाव को बढ़ाएगा और जीवन सुखी हो जाएगा, लगेगा बाबा किस तरह हर कदम पर हमारी सुनता है, हमें मदद करता है। पसंद है, कर देंगे? तो पुरुषार्थ का एक सिंपल प्लान बनाना, सवेरे उठकर भी करना है, और डेली मुरली सुनने अगर सेंटर में जाएंगे तो एनर्जी लेकर आएंगे। मोबाइल पे भी सुन लेते हैं लेकिन उससे एनर्जी नहीं मिलती, कामकाज करते भी सुन लेते हैं, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, नाते धोते भी सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो असली सुख मिलेगा वो सेंटर में जाके जब हम अच्छी स्थिति में बैठकर मुरली सुनेंगे तब मिलेगा। इससे जीवन सहज होगा, रोज हमें अच्छी बातें मिलती हैं, और जो सवेरे सवेरे भगवान को सुनने लगे रोज, देखो भारत की परंपरा थी, आंख खुली, घरों में मंदिर रखते थे, सीधे पहले उठकर मंदिर में गए ताकि पहले विचार सुंदर हों। लक्ष्य हमारा है सवेरे के विचार हमारे सुंदर हों, तो मुरली पे ध्यान देना, सभी सेंटर में जाके सुनेंगे तो मुरली अमृत और मुरली वरदान दोनों अनुभव होगी। तो एक सिंपल प्लानिंग कर लेना पुरुषार्थ की, 5 बातें बस, उसमें से कोई एक एक भी लेके चल सकते हैं, 2-3 भी लेके चल सकते हैं, 5 एक साथ लेके चलना है वो भी कर सकते हैं, तो जीवन सहज होगा। याद रखेंगे जितना अच्छा पुरुषार्थ होगा उतनी अच्छी स्थिति होगी और घर काम धंधे उतने ही समस्याओं से मुक्त रहेंगे। फिर भी कुछ आ जाए तो उसको चुनौती समझकर ईश्वरीय नशे से, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं, इस नशे से पार करना, हर चीज बल देकर जाएगी। परीक्षा तो होती है, अब बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं? सीता को भी अग्नि परीक्षा ली गई। बस लास्ट बात सुना देता हूं, मुझे याद आ गई, जब हम छोटे थे तो बाजार में मटके खरीद के लाते थे ना गर्मी में पानी भरने के लिए, लोग उसको ठोक ठोक के देखते थे। हमने पूछा ये ठोकने से क्या पता चलता है? कि पता चलता है कहीं पानी बह तो नहीं जाएगा, इसमें छेद तो नहीं है। हमें नहीं पता क्या होता था उसका अनुभव। तो मैं सोचता था जब ज्ञान में आ गया, उन दिनों 125 रुपये का शायद मटका था या 25 पैसे का था, इतना छोटा मटका खरीदने के लिए भी लोग ठोक बजाई करते हैं, तो भगवान राजा ही देगा तो ठोकेगा या नहीं? ताकि पावरफुल बन जाए आत्माएं, इतनी पावरफुल बन जाए किसी परिस्थिति से घबराएं नहीं, तो ठुकाई से डरना नहीं, पावरफुल बनेंगे। ओम शांति। चलो मन में कोई अच्छे दृढ़ संकल्प कर लेना योग के साथ,
खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, बेहद गगन में नजर।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने सहज जीवन और सहज पुरुषार्थ की विधियां बताई।